الحمد
Recording in progress.
لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ انعام کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، آیات نمبر 74 سے 81 تک کی، اور ان کا ترجمہ پڑھ چکے تھے. خلاصہ تفسیر جو ہے وہ ہم کل تک بھی پڑھ رہے تھے، اور اس میں پیج نمبر 378 جس کا کہ کچھ حصہ آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلیڈ بھی ہوگا، تو وہ ہم پڑھ رہے تھے. یعنی بیان القرآن سے جو خلاصہ تفسیر حضرت نے یہاں پہ نقل کیا ہے، تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم کو باتیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ولا اخا کہ یعنی جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو میری توجہ تو صرف اس کی طرف ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کی فطرت بنائی اور ان کو کمپلیٹلی بنایا اور بالکل صحیح صحیح بنایا، یکسو ہو کر کے بنایا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کے پارٹنرز ایسکرائب کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو پھر قوم نے جھگڑنا شروع کر دیا، اور ان کے جھگڑنے پر ابراہیم علیہ السلام جواب دیا کہ تم مجھ سے اس لیے جھگڑتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو مجھ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بات سمجھا دی ہے، مجھ تک علم پہنچ گیا ہے، سمجھ پہنچ چکی ہے، اور تم اس وجہ سے مجھ سے جھگڑ رہے ہو، گویا کہ تمہیں تکلیف ہے کہ مجھ تک علم کیوں پہنچ گیا، مجھے کیوں بات سمجھ میں آ گئی ہے، تم کیوں مجھ سے جھگڑ رہے ہو اس قسم کی بات کے اوپر. وَلَا أَخَافُ مَا يُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ مجھے کوئی چیز پہنچے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی مرضی سے پہنچے گا، ان لوگوں کی وجہ سے نہیں پہنچے گا جن سے تم مجھے ڈرا رہے ہو. بس ربی کل شیء علما. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں پھر اس طرح سے لکھا تھا کہ اسی طرح وہ یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کو اپنے احاطۂ علم میں بھی گھیرے ہوئے ہے، غرض قدرت و علم دونوں اسی کے ساتھ مختص ہیں، اسی کے ساتھ خاص ہیں، کہ کمپلیٹ قدرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے اور کمپلیٹ علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہارے آلیہ کو یعنی جن چھوٹے چھوٹے تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں تو ان کو نہ قدرت ہے نہ علم ہے، یعنی ان کا ذاتی کوئی علم نہیں، حتیٰ کہ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا جن کو کہ ان لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، یہ تو جمادات میں سے تھیں، جمادات یعنی جو فکس جمی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس تو علم کا کوئی تصور ہی نہیں. ان کے پاس علم کیسا علم؟ انسان کے پاس تو چلو کچھ علم ہوتا ہے، حیوان کے پاس تو چلو تھوڑا سا علم ہوتا ہے، جمادات کے پاس تو وہ بھی علم نہیں ہوتا نا. اسی طرح سے حیوان کے پاس کچھ قدرت ہوتی ہے، پودوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہوتی ہے کہ وہ گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی چیز ان کے راستے میں آ جائے تو اس کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا بھی دیتے ہیں، رائٹ. پلانٹس جو ہیں وہ گرو کرتے ہوئے کسی چیز کو اپنے راستے سے ہٹانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کو پھاڑ دینے کی قدرت رکھتے ہیں. لیکن یہ جمادات جو ہیں، یہ پتھر، یہ میٹلز، رائٹ، یہ پانی، یہ تو اپنے ذات میں کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے نا، اور ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے پاس. تو تمہارے تو آلیہ کو نہ کوئی قدرت ہے نہ علم ہے، کیا تم سنتے ہو؟ کیا تم یعنی کان کھول کر کے دماغ تک جو ہے وہ تمہاری کوئی بات پہنچتی ہے؟ ٹھیک ہے، سنتے ہو کا مطلب خالی ہے نہیں کہ کان سے سنتے ہو، بلکہ دماغ سے پروسیس بھی کرتے ہو اس بات کو جو تمہارے کانوں سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچی ہے. تو افلا तज़क्करून का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन हजरत शेखुल हिंद बल्कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज सुनने का इस्तेमाल किया, सुनने का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है। क्यों? इसलिए कि सुनने का काम उसी वक्त पूरा होता है जब इंसान सुनी हुई चीज को सोचता भी है, उसके ऊपर गौर भी करता है, ठीक है। इल्म की बात हो रही है यहाँ पर, फजूल की वसवसों की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि वसवसे सुनता है और झूठी बातें सुनता है फिर उनके ऊपर सोचना शुरू हो जाता है, नहीं। हर किस्म की सुनी हुई चीजों को सोचना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो सुनो उसको सोचना शुरू कर दो, नहीं। बल्कि जो इल्म की बात तुम सुनो, काम की बात तुम सुनो, तो भाई उसी वक्त तुम्हारा सुनना सुनना कहलाएगा जब तुम उसके ऊपर तदब्बुर भी करोगे, गौर व फिक्र भी करोगे, ठीक है। तो हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ने यहां पर ततज़क्करून की तफसीर में सुनने का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि सुनना जो है वो सोचने के साथ लाजिम और मलजूम है, ठीक है। तो क्या तुम सुनते हो और फिर भी ख्याल नहीं करते? ये किस किस्म का सुनना हुआ कि सुन तो रहे हो लेकिन सोच नहीं रहे हो उसके बारे में? और जिस तरह मेरे ना डरने की वजह यह है कि वो तुम्हारे माबूद इल्म कुदरत से महज मार्रा हैं, ठीक है। यानी मैं क्यों क्यों नहीं डर रहा तुम्हारे इन झूठे माबूदों से? क्योंकि ये तो इल्म और कुदरत दोनों से बिल्कुल खाली है ना, बिल्कुल आरी है, बिल्कुल आरी। मुआर्रा का लफ्ज जो है वो हम आरी के लफ्ज से अब इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, ये बिल्कुल आरी है, अकल से पैदल, ठीक है। उसी तरह इल्म से पैदल, कुदरत से पैदल है ये। इसी तरह ये बात भी तो है, ये बात भी तो है कि मैंने कोई काम डर का किया भी तो नहीं, मैंने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे डरना चाहिए। भाई इंसान गलत काम करे तो फिर उसको सजा का खौफ होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैंने कौन सा गलत काम किया है जिसकी वजह से मुझे सजा का खौफ हो, ठीक है। तो फिर मैं इन चीजों से कैसे डरूं जिनको तुमने अल्लाह ताला के साथ इस्तेहकाके इबादत और एतकादे रुबूबियत में शरीक बनाया हुआ है? मैंने कोई गलत काम किया है जो मैं डरूं उन चीजों से जिन चीजों को तुमने अल्लाह ताला के हक के इबादत, यानी इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, तुमने इनको जो है वो उस हक में घुसेड़ दिया है, ठीक है। और रुबूबियत का एतकाद रखना ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, यानी रब रब्बे हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। तो ये सोच तुम्हारी जो है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए थी, तुमने इन चीजों को भी रुबूबियत के अंदर दाखिल कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ तुमने इनको शरीक बनाया है, तुमने इनको शरीक बनाया ना, हालांकि तुमको डरना चाहिए दो वजह से। अव्वल तो तुमने डर का काम यानी शिर्क किया है जिस पर अजाब मुरतब होता है। दूसरे खुदा का आलिम और कादिर होना तुम्हें मालूम हो चुका है, मगर इस बात के वबाल से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीजों को शरीक ठहराया है जिनके माबूद होने पर अल्लाह ताला ने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, ठीक है। यानी पहला काम तो तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया, इस वजह से तुम्हें डरना चाहिए, और दूसरा काम क्या किया कि तुमने ऐसी चीजों को अल्लाह ताला का शरीक बना दिया कि जिनके लिए तुम्हारे पास कोई दलील ही नहीं है। यह है ना, अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाही वला तखाफूना अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाही मा लम युनज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, ठीक है। तो तर्जुमे के दौरान इस पे काफी बात हुई थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ऊपर चढ़ गए, ठीक है, कि मैं तुमसे क्यों डरूं, मैं तुम्हारे माबूदों से क्यों डरूं, हालांकि तुम तो डरते नहीं हो, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फ्रंट फुट पे जा करके बिल्कुल ऑफेंसिव तरीके से जो है वो बात करी, भीगी बिल्ली की तरह से बैक फुट पे जा करके डिफेंसिव तरीके से बात नहीं करी, क्योंकि उनका केस जो था वो मजबूत था, वो वाकई शिर्क करने वाले नहीं थे, वो वाकई तौहीद के कायल थे, वाकई मुवाहिद थे। तो जो वाकई मुवाहिद होता है, तौहीद वाला होता है और शिर्क से बचा हुआ होता है वो निडर होता है, और जो मुवाहिद नहीं होता या जिसने किसी न किसी दर्जे का कोई ना कोई शिर्क किया हुआ होता है तो अब जो है ना वो डरपोक होता है। वो डरता है फिर वो, ठीक है, क्योंकि उसको फिर या तो वो उसके अकल में इसकी बात आई भी होती है कि हाँ भाई ये तो यानी मैंने गलत काम किया हुआ है, इस वजह से उसको वो अकली तौर पे कन्विंस होता है कि गड़बड़ है कुछ, मुझे मुझे पिटाई होगी, मेरी पिटाई होगी, ठीक है। या अगर वो अकली तौर पर डिनायल का शिकार हो कि नहीं मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरी पिटाई हो, या कोई मेरी पिटाई कर ही नहीं सकता, ये डिनायल मोड कहलाता है, ठीक है। लेकिन डिनायल मोड वाला बंदा भी डरपोक फिर भी होता है, हालांकि वो डिनाई कर रहा है अपनी गलती को, अपनी गलती से इनकार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक रूहानी कमजोरी ये अल्लाह पैदा कर देते हैं, ये अल्लाह ताला पैदा कर देता है, ठीक है, क्योंकि रूहानी तौर पर जो है ना वो बंदा कमजोर हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, वो एडमिट भी नहीं कर रहा होता, लेकिन वो कमजोर हो जाता है क्योंकि अल्लाह उसको कमजोर कर देते हैं, ठीक है। तो हम अगर बगैर किसी शरी मसलहत के हम जो है वो झुके रहते हैं ना हर वक्त दूसरों के सामने, बगैर किसी शरी मसलहत के अगर हम झुके रहते हैं दूसरों के सामने, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी न किसी शक्ल का सूरत का शिर्क कर रहे होते हैं। शरी मसलहत का लफ्ज यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम भी एक बार झुके थे, झुके से मुराद फिजिकली कोई नहीं झुके थे, सजदा रुकू में नहीं झुके थे, बल्कि झुक के सुलह करी थी कुफार के साथ, नबी अलैहिस्सलाम ने कुफार के साथ, मुशरिकीन के साथ, राइट, बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किया था, कब किया था, सुलह हुदैबिया में किया था, ठीक है। तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाला काम किया था कि बुतों को पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वालों की बात बहुत सारी मान ली थी और बहुत जो है वो कॉम्प्रोमाइज लेवल के ऊपर जा करके फिर सुलो करी थी, तो ये फिर नाउज बिल्ला क्या ये क्या ये बुजदिली थी, क्या ये नाउज बिल्ला कोई इस वजह से बुजदिली थी या कि नबी अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता कोई नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला आप कोई गलत काम कर रहे थे इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम जो है वो उनके ऊपर चढ़ नहीं गए थे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मौके के ऊपर चढ़ गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ऊपर नहीं चढ़े, बल्कि नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नबी अलैहिस्सलाम से कोई गलती नहीं हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि ये शरई मसलहत से नबी अलैहिस्सलाम ने काम किया था, ठीक है। तो इससे आप की जिंदगी में अल्लाह ताला ने ये एक वाकया करवा करके इस बात को भी दीन का हिस्सा बना दिया, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो कुछ हुआ ना, ये तो उम्मत के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए हुआ ना, उम्मत की हिदायत के लिए हुआ, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या चीज मिल गई कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसके अंदर कोई शरी मसलहत बनती हो तो फिर इस किस्म का मामला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन एक्सेप्शनल केस कहलाएगी, एक्सेप्शनल केस कहलाएगा, बट दिस इज नॉट द रूल। ये नहीं है कि बगैर किसी शरी मसलहत के आप खामखा ही जो है वो हर वक्त डरपोक और यानी अनश्योर किस्म के आप सिचुएशन में रहते हो कि जी आप इंटेलेक्चुअली खुद ही जो है वो कन्विंस ना हो कि आप किस चीज को सही समझते हैं किस चीज को गलत समझते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा होना जो है वो बहुत बुरी बात है। बहरहाल ये बात हम पहले भी कर चुके थे, तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो है ना कि तुम्हारे ऊपर कोई सुल्तान नाजिल नहीं हुई, यानी कोई दलील, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल दलील की बात हो रही है कि भाई कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए कि भाई तुम्हारा मौकफ जो है वो दुरुस्त है, सवाए इसके कि हमने अपने बाप दादाओं को ये वाला काम करते देखा है, बस और क्या, ये तो कोई दलील ना होना है, कोई ना। तो फरमाया कि तुम इस बात के वबाल से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीजों को शरीक ठहराया जिनके माबूद होने पर अल्लाह ताला ने तुम पर कोई दलील लफ्जन या मानन नाजिल नहीं फरमाई, ठीक है, ना कोई लफ्ज मिला, ना कोई जो है वो उससे अकली तौर पर तुम कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हो कि जिसकी बुनियाद पर तुम अल्लाह ताला के साथ इन चीजों को जो है वो शरीक ठहरा रहे हो जो कि अल्लाह की मखलूक है। मतलब ये कि डरना चाहिए तुमको, फिर उल्टा तुम मुझको डराते हो, डरना तो तुमको चाहिए, उल्टा तुम मुझे डरा रहे हो। सो बात इस तकरीर के इंसाफ से सोचकर बतलाओ कि इन दो मस्कूरा जमातों में से यानी मुशरिकीन व मुआहिदीन में से, ठीक ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जमात, चाहे वो बेशक उस वक्त अकेले थे, लेकिन एक अकेला बंदा भी तो एक जमात होता है ना। ठीक है, क्या है वो कुरान मजीद क्या है थी, काना इब्राहिम उम्मा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत है, तो मुवाहिदीन की जमात या मुशरिकीन की जमात, इनमें से अमन का यानी उसका के उस पर खौफ वाकई ना हो, ज्यादा मुस्तहक कौन। अमन का मतलब क्या होता है, खौफ ना। ठीक है, अगर आप के ऊपर कोई बकायदा तलवार से और गोली से हमला नहीं भी कर रहा, ठीक है, तो आप उस वक्त तक अमन वाले नहीं कहलाएंगे जब तक आपके दिलो दिमाग के ऊपर खौफ भी ना हो, तब आप अमन वाले कहलाएंगे। सिर्फ ये कोई थोड़ी कि अभी तक किसी ने हमला नहीं किया इस वजह से मैं बेखौफ हूं, जब अमन के लिए दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, बेखौफ होना। ठीक है, तो अगर खौफ है तो इसका मतलब यह है कि अमन नहीं है, तो वही इन्होंने तशरीह कर दी है कि अमन का यानी इसका कि उस पर खौफ वाकई ना हो, ज्यादा मुस्तहक कौन है, और खौफ भी वो जो वाकई में काबिल एतबार है यानी आखिरत का, अगर तुम कुछ खबर रखते हो इनकुम से। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अपना पूरा का पूरा ये केस रखा और अच्छे से दलीलों के साथ उनके सामने अपना मतमई नजर जो है वो बयान किया। अब मारिफ मसाइल पे हम आ जाते हैं इन्हीं आयात की, कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यार आपके स्क्रीन शेयरिंग जब चेंज होती है तो पूरा विंडोज जो है वो अपसेट हो जाती है, एक मिनट है। अच्छा, तो फिर से ना। अच्छा, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनसे पहली आयात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन अरब को खिताब और बुत परस्ती छोड़कर सिर्फ खुदा परस्ती की दावत का बयान था। ठीक है, यानी पीछे जो आयात थी ना, तो उनमें नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला मुखातब थे और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से मुखातब थे। ठीक है, और क्या कि मुशरिकीन अरब को खिताब, कि आप उनसे कह दीजिए कुल लिल मुशरिकीना या कुल लिल्लजीना। ठीक है, तो ये नबी अलैहिस्सलाम और मुशरिकीन मक्का की बातें पीछे चल रही थी, और बुत परस्ती को छोड़कर खुदा परस्ती। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल ये आजिज आपसे करना चाहेगा कि परस्ती जो है, परस्ती, ठीक है, अब ये जो लफ्ज है ना, इसके बारे में भी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्लियर कर लेना चाहिए जहन के अंदर कि भाई परस्ती का जो लफ्ज है, खुदा परस्ती, बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे कि लफ्ज से जाहिर है कि परस्ती का जो लफ्ज है ये परस्तिश से निकला, परस्तिश। ठीक है, परस्तिश का जो लफ्ज है ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है। तो अरबी का इक्विवेलेंट क्या बनता है परस्तिश का, अरबी का इक्विवेलेंट ऑफ कोर्स इबादत बनता है। ठीक है, इबादत। ठीक है, तो खुदा परस्ती का मतलब खुदा की इबादत, बुत परस्ती का मतलब बुत की इबादत, और शख्सियत परस्ती का मतलब शख्सियत की इबादत। ठीक है, अब हम चूंकि कंफ्यूज तो हैं ही, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी या पाकिस्तानी बॉर्न कंफ्यूज मुस्लिम या इंडियन बॉर्न कंफ्यूज मुस्लिम है ना, ये तो पीछे बात हो चुकी है ना एक क्लास के अंदर, तो हम चूंकि कंफ्यूज हैं क्योंकि इल्म हमने हासिल नहीं किया, इसका इल्म हासिल नहीं किया, बाकी बहुत सारे इल्म हासिल किया लेकिन इन बुनियादी अकायद का हमने इल्म हासिल नहीं किया, तो इस वजह से हम इस बारे में भी कंफ्यूजन के शिकार थे। इंशाल्लाह अब नहीं होंगे कि भाई इबादत जो होती है ना, इबादत ये किस चीज को कहते हैं, परस्तिश इबादत को कहते हैं, तो इबादत किस चीज को कहते हैं, इबादत मोहब्बत की उस इंतहा को कहते हैं कि जिसके अंदर हर दूसरी चीज जो है वो सानवी हैसियत अख्तियार कर, हर दूसरी चीज सानवी हैसियत अख्तियार कर जाए और माबूद जो है यानी जिसकी इबादत की जा रही है वो अव्वल हैसियत अख्तियार कर, सबसे अहम, सबसे अफजल, सबसे आला। ठीक है, इसको इबादत कहते हैं। ठीक है, तो अब जो बुत परस्ती का मतलब क्या कि भाई आप उन बुतों की खातिर जो है वो हर दूसरी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, कि जी बुतों ने ये हुक्म दिया, बुतों ने ये कहा, तो इस वजह से हमें हमें बस ये करना है, चाहे कोई भी नाराज हो, हम बुतों की परस्तिश करेंगे। अब बुत कहते तो नहीं है, बुतों से तो कोई आवाज नहीं आती, ठीक है, हत्ता कि सूरज चांद सितारे से भी कोई आवाज नहीं आती, लेकिन लोग जो है वो सूरज चांद सितारे की इबादत करते थे, बुतों की इबादत करते थे, हालांकि वहां से तो कोई आवाज नहीं आ रही। तो इसका क्या जवाब है भाई? इबादत का मतलब होता है उनका उनका हुक्म मानना, ये मतलब होता है इबादत का। चाहे आज के दौर में सो कॉल्ड एथियस जो है ना, वो ये कहें कि नहीं, हुक्म हुक्म कोई नहीं होता। आजकल का एथियज्म क्या है? आजकल का एथियज्म ये है कि खुदा तो है, लेकिन खुदा का कोई हुक्म नहीं है। जान ले अच्छी तरीके से कि आज का दहरिया जो है वो ये कहता है कि खुदा तो है, लेकिन खुदा का हुक्म कोई नहीं है, ठीक है, खुदा का हुक्म कोई चीज नहीं है, बस खुदा है, बस वो कुछ कुछ करता है, वो या बस वो है, वो बस, ठीक है, हो सकता है कुछ करता हो सकता है कुछ ना करता हो, ठीक है, अच्छा हुक्म हुक्म कोई नहीं। अच्छा आप ये बताएं, आप सबसे ये सवाल है मर्दों औरतों सबसे, कि अगर खुदा का कोई हुक्म नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा का कोई हुक्म नहीं है? खुदा है लेकिन खुदा का कोई हुक्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? अच्छा ये इन्होंने क्या लिखा मर्दों ने, कि इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफ वलम यकु मिनल मुशरिकीन। जी ठीक है बिल्कुल, ये तो दे ऑल यूज्ड टू लिसन टू द प्रीस्ट हु यूज्ड टू ब्लेम व्हाट द गॉड्स वांट। ठीक है, तो ये तो आपने सवाल का जवाब दिया कि भाई बुत तो कुछ कहते ही नहीं थे, बुत तो खामोश थे, सितारे भी कुछ नहीं कहते थे, चांद और सूरज भी कुछ नहीं कहते थे, तो फिर उनका हुक्म कहाँ से आ गया? तो भाई वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके जो मुजावर होते थे ना, मुजावर, ठीक है, जो टेम्पल के टेक केयरर होते थे, हारिस होते थे टेम्पल के, वो कहते थे कि भाई बुत साहब ने ये फरमाया है कि ये करो और ये ना करो। बुत ने तो कुछ नहीं कहा होता, असल में मुजावर ने कहा हुआ होता है, जो केयर टेकर होता है ना बुत का, क्योंकि बुत अपना खुद केयर टेक तो कर नहीं सकता, तो उसने कहा होता है, ठीक है, तो ये तमाशे चल रहे होते थे, ठीक है। अच्छा अब हमारा खुदा हमें कुछ कहता है? हमारा खुदा भी कुछ नहीं कहता, उसकी आवाज तो आती नहीं है, ठीक है, तो हमारा खुदा भी हमें कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन बीच में नबी, राइट, नबी कहते हैं कि खुदा ये कहता है, खुदा ये मना करता है, खुदा ये करने को कहता है, खुदा ये करने से मना करता है, ठीक है, हम नबी की बात मानते हैं, खुदा की थोड़ी आवाज आती है, नबी की आवाज भी, वैसे तो हम लोगों को तो नबी की आवाज भी नहीं आती, वो तो नबी से जो चीज हम तक सनद के जरिए पहुंची है तो हम उसकी बात मानते हैं, ठीक है, तो नबी असल में ईमानी, जब भी ईमान जो है ना वो नबी के ऊपर एतमाद को कहते हैं, और जो कुफर है, कुफर जो है वो किस पर एतमाद को कहते हैं? कुफर जो है वो उन गंदे गलीज मुजाविरों के ऊपर एतमाद करने को कुफर कहते हैं। गंदे गलीज जो मुजाविर होते हैं ना, जो पंडित होते हैं, या जो उनके झूठे और यानी बददियानत किस्म के जो वो मंदिरों के जो बड़े पुजारी होते हैं ना, तो उनके ऊपर एतमाद करने को कुफर कहते हैं, ठीक है, और सादिक और अमीन और सच्चे और हसीन, राइट, हर लिहाज से, अखलाकी एतबार से, जाहिरी एतबार से, बातनी एतबार से जो बेहतरीन इंसान थे उनके ऊपर एतमाद को ईमान कर ईमान कह, ठीक है, ना खुदा की आवाज आती है, ना बुत की आवाज आती है, राइट, ना अल्लाह की आवाज आती है, ना कौकब और कमर और शम्स की आवाज आती है, आवाज किसी की भी नहीं आती, ना अल्लाह की, ना कौकब शम्स और कमर की, ठीक है, दरमियान में जो होते हैं ना उनके ऊपर एतमाद करने को ईमान और कुफर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा उनके मानने वाले एक्सपर्ट ओलमाए सू की इबादत, एक्सपर्ट ओलमाए सू की इबादत, ये बात अच्छा आपने इस्तेमाल किया, डू वट एवर यू वॉन्ट एज गॉड हैजंट एनी रूल्स, मतलब वो पैगंबर को नहीं मानते, ठीक। अच्छा तो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ये जो बात मैंने अभी जो आपसे सवाल किया था वो ये था कि भाई अगर अल्लाह तो है लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ नहीं है, अल्लाह का हुक्म कोई नहीं है, ठीक है, ये मॉडर्न एथियज्म, मॉडर्न दहरिया दहरियत जो है वो ये है, ठीक ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी साइंस जो है ना, इन दहरियों की अपनी जो साइंस है वो इस बात को प्रूव कर चुकी है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्रिएटर ना हो, कोई ऑर्गेनाइजर ना हो, कोई सस्टेनर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये अपनी अपनी साइंस के तो डिनाइल कर नहीं सकते, अपने साइंस को तो डिनाई कर नहीं सकते ना, इस वजह से इन्होंने मॉर्फ किया है, इन्होंने दहरियत को जो है ना वो मॉर्फ किया है, इनको दहरियत को चेंज कर लिया। देखें अडेप्टेबिलिटी है, इसको कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। आप दहरियत को भी आप अपने बिलीफ सिस्टम को अडेप्ट कर लेते हैं, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, हम अपने बिलीफ सिस्टम को अडेप्ट नहीं करते। लेकिन जो काफिर होते हैं ना, जो झूठा और जिसका कोई बेसिस होती नहीं है, वो बड़ी आसानी से अडेप्ट कर लेता है। तो इन्होंने एथियज्म को अडेप्ट कर लिया कि खुदा तो है लेकिन खुदा का हुक्म कोई नहीं है, राइट? कोई कम्युनिकेशन कोई नहीं हुई भी खुदा की तरफ से हमारी तरफ, ठीक है? आज अनफॉर्चुनेटली हमारा बच्चा बच्चा जो है वो इसकी के ऊपर बिलीव करता है, इल्ला माशाल्लाह, जिसकी ईमानी तरबियत होती है ना वो नहीं करता, लेकिन उसके अलावा सारी आपकी पॉपुलेशन जो है वो इसी पर बिलीव करती है कि खुदा तो है लेकिन खुदा का हुक्म कोई नहीं है, ठीक है? खुदा तो है, खुदा का हुक्म कोई नहीं है, ठीक है? बस जो है तुम्हारी अपनी अकल का हुक्म है, तुम्हारी अकल जो है वो जो हुक्म दे उसको मानो, वही तुम्हारा दीन है, ठीक है? मेरा दीन मेरी मर्जी, इसी को कहते हैं। तो मतलब वो इसका मतलब ये कि हर कोई खुदा है, जिसका जो दिल चाहे करे, मैं भी खुदा हूं और मैं अपनी मर्जी से जो करूंगा, खुदा तो नहीं है। तो आवर ओन विल इज सुप्रीम, ठीक है? और दूसरी बात ये भी कि खुदा का कोई हुक्म नहीं है, तो इसका एक और भी कॉन्सिक्वेंस निकलता है, इसका एक और भी कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि खुदा का कोई हुक्म नहीं है, ठीक है? वो ये कि भाई हुक्म अगर है भी, चलो चलो मान लिया खुदा का हुक्म है, ठीक है, चलो मान लिया कि खुदा ने हुक्म दिया, लेकिन मैं नहीं करता उस हुक्म पे अमल, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है? नो कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों? देखें, हमें अंदाजा नहीं है कि हमारी औलाद कहाँ जा रही है और कहाँ जा चुकी है, हमें अंदाजा नहीं है कि हमारी पाकिस्तानी नस्ल जो है वो कहाँ जा चुकी है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस बात का। हिंदुस्तानी इसलिए नहीं कहते कि हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू और सिख और ये सब भी रहते हैं ना, लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसको अंदाजा नहीं है कि उसकी नस्ल कहाँ जा चुकी है, अपने करतूतों की वजह से, अपनी बेवकूफियों और बदअकलियों की वजह से हमारी नस्ल कहाँ जा चुकी है, ठीक है? वो यहां जा चुकी है कि खुदा तो है लेकिन खुदा जो है ना वो इतना बड़ा है कि उसके जो है वो कोई इमोशंस ही नहीं है, ठीक है ना? अंग्रेजी दान है ना, अंग्रेजी के अल्फाज पढ़े में दीन को अंग्रेजी की बुनियाद पे समझा हुआ है, ठीक है ना? कुरान को भी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज से खाया है ना, अंग्रेज का खाया है, अंग्रेज का नमक खाया है, अंग्रेज से तालीम हासिल करी है और आज तक हासिल किए चले जा रहे हैं। मुमलकत खुदादाद को 75 साल पहले बनाने के बाद भी अंग्रेज से तालीम हासिल किए चले जा रहे हैं। तो अब अगर दीन को भी समझते हैं तो वो अंग्रेज की जुबान में समझते हैं, दीन को भी अंग्रेज की जुबान में समझते हैं। अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया अपने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल करने का पसंद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन, राइट? हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया, जो आदत के साथ मैं हाफिज नहीं हूँ अगर आयत पढ़ने में गलती करी हूँ, लेकिन सबको पता है कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने इसका ऐलान भी फरमाया कुरान मजीद के अंदर। लेकिन अरबी तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिकन स्कूल जाना है, ब्रिटिश स्कूल जाना है और पता नहीं कौन कौन से स्कूल जाना है, ठीक है? अब कुरान भी समझने पर आ रहे हैं ना, तो वो भी अंग्रेजी की जुबान, अंग्रेजी की बुनियाद पर, ठीक है? तो अब जो है वो अंग्रेजी से जब समझेंगे तो फिर यही कि बस पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से मफहूम बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला तो इतना वो है, उसका तो कोई वो है ही नहीं, अल्लाह ताला की नाराजगी, अल्लाह ताला की का गुस्सा कुछ है ही नहीं, राइट? है तो वो इतना बड़ा है, सब कुछ तो उसने बनाया, लेकिन उसकी रजा कोई चीज नहीं है, उसकी नाराजगी कोई चीज नहीं है, उनको उसकी खुशी कोई चीज नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब उसकी ना खुशी है, ना अल्लाह किसी चीज से खुश होता है, ना अल्लाह ताला किसी चीज से नाराज होता है, राइट, समझ रहे हैं बात को? ना अल्लाह किसी चीज से खुश होता है, ना अल्लाह किसी चीज से नाराज होता है। तो अब ये अहकामात की रेलेवेंस क्या हो गई, क्या रेलेवेंस रह गई इन अहकामात की? कोई रेलेवेंस रह गई, कोई कोई इंपॉर्टेंस रह गई इन अहकामात की? जब अल्लाह ने ना खुश होना है ना अल्लाह ने नाराज होना है, तो फिर अहकामात का क्या करें? अचार बना के खाएंगे आप अहकामात को? अहकामात का आप मुरब्बा बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे इन अहकामात का? मानो तो भी कोई फायदा नहीं, ना मानो तो भी कोई नुकसान नहीं। हमें अंदाजा नहीं है कि ये कोई घड़ी हुई बातें, मैं घड़ के आपको ये बात नहीं बता रहा, दिस इज एक्चुअली व्हाट आवर किड्स आर थिंकिंग, दिस इज एक्चुअली व्हाट आवर किड्स आर थिंकिंग। ठीक है, बिकॉज व्हाई व्हाई आर दे आर थिंकिंग दैट? बिकॉज हमने हमने ईमान को घास ही नहीं डाली कि ये क्या चीज होती है। हमने ईमानी तरबियत ना खुद सीखी, जाहिर है फिर अपनी औलाद को कैसे सिखाते, राइट? नमाजें पढ़ना सिखा दी जो दीनदार थे उन्होंने, वरना जो दीनदार नहीं थे उन्होंने तो वो भी नहीं सिखाया। जो दीनदार थे उन्होंने नमाजें पढ़ना सिखा दी, उन्होंने वुजू करना सिखा दिया, उन्होंने फजाइल जो है वो गिनवा दिए, रटवा दिए, लेकिन ईमान होता क्या है ये भी नहीं पता, राइट? और मुसर हैं इसके ऊपर, डटे हुए हैं इसके ऊपर कि इसकी जरूरत भी नहीं है कोई, राइट? इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, लगे रहो अपने फजाइल के ऊपर, लगे रहो अपने अमाल के ऊपर, राइट? तो अब जो है ना, वो हमारी औलाद इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि ठीक है, दे पोजिशन, जैसे इन्होंने लिखा, दे पोजिशन अल्लाह इमोशन इज बीइंग समथिंग बिलो हिज लेवल। दे से इफ अल्लाह इज सो ग्रेट देन व्हाई डज ही बॉदर टू वरी अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स। समझ में आई? इतनी तो अंग्रेजी पढ़ी हुई है ना, इतनी समझ में आई सबके कि भाई अहकामात की कि क्या क्या कौन से अहकामात, कैसे अहकामात? अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह ताला ने सारी चीजें बनाई है, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि किसी ने सारी चीजें बनाई है, इतनी जबरदस्त किस्म की मखलूक बनाई है, अहकाम किधर से आ गए, क्या जरूरत है? क्योंकि अल्लाह के ऊपर तो कोई इमोशंस, कोई अंग्रेजी की बुनियाद पर इमोशंस का लफ्ज समझा है और अल्लाह को इमोशन से बालतर कर दिया है अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस के मुताबिक। ठीक है, तो हमारी कोई इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है कि अपनी औलाद के जो ईमानी तरबियत है और तालीम का निजाम है, इसके बगैर हमारा ईमान, हमारी नस्लों का ईमान नहीं बच सकता है। मेरी मत सुनो तुम, लेकिन हजरत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह है ना, कितने बड़े मानते हैं ना सारे यहाँ पे दीनदार बैठे हुए मर्द भी और औरतें भी, हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा मानते हो कि नहीं मानते हो, राइट? कब कहा था उन्होंने इंडिया के अंदर कि ये जो इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की तुम्हें नजर आ रही है ना, ये नहीं रहेंगे यहां पर अगर तुम अपना तालीमी निजाम नहीं बनाओगे, तो ये कुछ भी नहीं बाकी रहेगा तुम्हारा। ठीक है, सारी जो तवज्जो है वो दाढ़ियां उगाने के ऊपर तो आ गई है, लेकिन ईमानी तरबियत कुछ पता ही कोई नहीं है क्या चीज होती है भाई। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो लगे हुए हैं, कुछ लोग तो पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, और ये दीन की हिफाजत अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के वास्ते से करवाएगा, अल्लाह ने करनी है इसकी हिफाजत, लेकिन हम बात को समझ रहे हैं, ये हमारा मसला है, हम नहीं समझेंगे तो हमारी नस्ल तो गई ना, फिर उसके बाद किसी दूसरे की नस्ल अगर महफूज हो गई क्योंकि वो इस बात को समझ रहा है, लेकिन मेरी नस्ल तो महफूज नहीं होगी ना, मेरी औलादों के अंदर ईमान तो बाकी नहीं बचेगा ना। यहाँ पे आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, कुरानी अरबी शुरू कैसे करें? वैसे तो आप पढ़ते नहीं हैं, जिनको कुरानी अरबी के लिए इनवाइट किया जा रहा हो, क्लासेस सुना करें, क्लासेस ठीक है, रबते में रहा करें ताकि पता चले कि क्या चीज कब ऑफर हो रही है। रूहानियत की कोई हैसियत नहीं है जिन फिरकों में वो भी इल्हाद ही के मुत्तकिब हुए हैं ना, जिन फिरकों में रूहानियत की कोई हैसियत नहीं है। क्या मतलब रूहानियत की कोई हैसियत नहीं है? जाहिर है रूहानियत को अगर आप दीन में से निकाल देंगे तो फिर क्या बच गया उसके बाद, तो बाकी आप इलाहाद की कोई ना कोई शक्ल बन जाएगी, क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि ये बुत परस्ती, हाँ परस्ती की बात हो रही थी, परस्तिश, ठीक है, तो परस्तिश जो होता है ना भाई, ये इबादत, इसको परस्तिश कहते हैं। परस्तिश जो है वो इबादत से कम दर्जे की जो मोहब्बत होती है ना, इबादत से कम दर्जे की मोहब्बत, क्या चार दर्जे बताए थे ना कल, कल भी और परसों भी, रغبت तलब फिर मोहब्बत फिर इबादत। तो इबादत तो सबसे ऊंचे दर्जे की मोहब्बत को इबादत कहते हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के मैलान को, सबसे ऊंचे दर्जे की तलब को इबादत कहते हैं। लेकिन इससे जो नीचे दर्जे की मोहब्बत होती है या तलब होती है या रगबत होती है उसको इबादत नहीं कहते। ठीक है, तो अब हम चूंकि पता वता कुछ है नहीं हमें, तो अब जो है ना वो अगर हम अपने मशायख से मोहब्बत करते हैं, मशायख का एहतराम करते हैं, ठीक है, और मशायख से सीखने की मेहनत करते हैं, इल्म हासिल करने की मेहनत करते हैं, तो जिसको पता ही कुछ नहीं कि इबादत क्या चीज होती है, परस्तिश क्या चीज होती है, वो कहता है कि ये तो शख्सियत परस्ती कर रहे हैं, राइट? शेख का एहतराम कर लिया, शेख से मोहब्बत कर ली, शेख से जो है वो इल्म सीखने के लिए जो है वो अपने आप को पेश कर दिया इल्म सीखने के लिए, ठीक है, तो आगे से क्या ताना मिलता है? ये शख्सियत परस्ती कर रहे हैं, यानी शेख की परस्तिश कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, ये परस्तिश कैसे हो गई? राइट, परस्तिश तो उस वक्त होगी ना कि जब ये इबादत के दर्जे में पहुंचेगी, उस वक्त ये परस्तिश बनेगी। आपको ना उर्दू जुबान का कुछ पता है, ना आपको अरबी जुबान का कुछ पता है, ना आपको फारसी जुबान का कुछ पता है, पता नहीं अंग्रेजी जुबान का जो कुछ पता है उसकी बुनियाद पर कुछ आपने जो है वो अपना बनाया हुआ है दिमाग के अंदर, ठीक है, सीखे ना फिर। ये तो नहीं कि हमारी कोई मीरास है ये वाला इल्म, अल्लाह ताला ने इल्म जो है वो सबके लिए अवेलेबल किया है, सीखें फिर इन चीजों को। और इस तरह से जजमेंटल बगैर इल्म के किसी के बारे में नहीं हो जाना चाहिए कि ये शख्सियत परस्ती कर परस्तिश कर रहे हैं, शख्सियत परस्ती कर रहे हैं, ठीक है भाई। जो नाजायज चीजें हैं उनके लिए मोहब्बत तो क्या, उनकी तलब भी जायज नहीं है, जो नाजायज बातें हैं उनकी रगबत भी जायज नहीं है, राइट? जो नाजायज चीजें हैं, नाजायज काम है, शिर्क है या गुनाह है या बेवकूफी है, बदअकली है, उनकी तरफ तो रगबत भी जायज नहीं है, चह जाए के तलब और मोहब्बत उनकी तरफ जायज होती। लेकिन जो जायज चीजें अल्लाह ताला ने रखी हैं, जिनको जायज मोहब्बतें या जायज जो है वो असबाब कहा जाता है, तो उनकी तरफ तो रगबत भी जायज है, तलब भी जायज है, मोहब्बत भी जायज है, लेकिन इबादत जायज नहीं है, इबादत जायज नहीं है किसी भी मखलूक की, चाहे अम्मी अब्बू क्यों ना हो, चाहे अम्मी अब्बू क्यों ना हो, चाहे शौहर बीवी क्यों ना हो, उनकी इबादत जायज नहीं है कि उनके हुक्म के ऊपर जो है वो आप किसी और का, अल्लाह का हुक्म तोड़ना शुरू हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम के दीन की जो है वो खिलाफ वर्जी करना शुरू हो जाए अम्मी अब्बू के हुक्म की वजह से, क्योंकि वो इबादत कहलाएगी, ठीक है। तो परस्तिश का जो लफ्ज है ना, ये बहुत ज्यादा हम थ्रो अराउंड करते फिरते हैं गलत गलत चीजों के ऊपर, जिनका कि हमें हक नहीं है, हमें हासिल करना चाहिए इन चीजों का। आगे फरमाते हैं कि इन आयात में इसी दावत हक की तायीद एक खास अंदाज में फरमाई गई है, जो तबरी तौर पर अहले अरब के लिए दिल नशीन हो सकती है, अहले अरब की तबीयत को जो है ना जो कि अट्रैक्ट करने वाली चीज हो सकती है। वो क्या? वो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम अरब के जद अमजद हैं, और इसीलिए सारा अरब उनकी तअज़ीम पर हमेशा से मुत्तफिक चला आया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये भी मानते थे, क्या मतलब मुत्तफिक अलैह, पीछे भी बात हुई है ना कि जब आप दावत देते हैं किसी को उस चीज की तरफ जिससे वो एग्री नहीं करता, ठीक है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं किसी ऐसी तरफ उसको माइल करने के लिए जिसके ऊपर वो पहले से डिस यानी एग्री नहीं करता, उसके खिलाफ है, तो यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट्स कॉमन बिटवीन यू एंड हिम, कोई मुत्तफिकुन अलैह नुक्ता चाहिए आपको, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने देखें यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें यह उसूल समझाया है कि मुत्तफिकुन अलैह, तो नबी अलैहिस्सलाम को जब वदक्किर बिही और जिक्रा का हुक्म फरमाया तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दिखाई, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज कॉमन बिटवीन यू एंड देम, ठीक है। इन आयात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस मुनाजरे का जिक्र किया गया है जो उन्होंने बुत परस्ती और नजूम परस्ती के खिलाफ अपनी कौम के साथ किया था और फिर सबको तौहीद हक का सबक दिया था, ठीक। हम किसी से बात करते हैं अपनी जो है ना वो बुकरातियत झाड़ते हैं उसके सामने, वो उल्टी सीधी जो है वो उसका रद्द कर देता है वो। ठीक है, हम फिर क्या बैठ जाते हैं, ओहो वो तो मेरी कोई बात ही नहीं मानते। खुसूसन औरतें शौहर से बात करती हैं, शौहर दीन पर नहीं होते या शौहर जो है वो फराइज की अहमियत को नहीं समझते, तो शौहर से ऐसी बातें कर रही होती हैं जिनको कि शौहर एग्री नहीं करते जिनके ऊपर। तो भाई कितनी बार समझाया है कि शौहर से ऐसी बातें मत किया करें कि जिनके ऊपर वो एग्री ना करते हो, उनके साथ इस कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करके बात करें जिसके ऊपर वो एग्री करते हो। ठीक है, इस तरीके से बात करें, यानी मिसाल के तौर पर आप जो है वो हजरत हैं, ये हमारे हजरत ने ये फरमाया था, शोर से जाके बोल रही है, हमारे हजरत ने ये फरमाया था, आप क्यों नहीं मानते इस बात को? तो वो कहेंगे आपके हजरत कौन है भाई, मैं क्यों मानू आपके हजरत को, मैं आपके हजरत को, मेरे तो हजरत नहीं है ना वो, मैं आपके हजरत को क्यों मानू, मैं आपके हजरत की बात क्यों मानू, क्या ख्याल है? ऐसा नहीं होगा और होना भी चाहिए ऐसे ही भाई, वो तो हजरत को मानती ही नहीं, हजरत की बात क्यों माने? ठीक है, तो लेकिन बेवकूफी की हरकत यही करती है कि अपने शौहर से हजरत का, वो उल्टा जो है वो उल्टा गुस्सा हो जाएगा ना कि ये तुमने क्या, मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये तुमने किसको बनाया हुआ है, पता नहीं क्या बनाया हुआ है, ऐसी बेवकूफी की हरकतें करनी। हालांकि इतनी बार क्लास में समझाया, इतनी बार इसके ऊपर बात हो चुकी। ठीक है, तो भाई वो खबरों को मानते हैं, है? मानते हैं शौहर, शौहर लोग खबरों को तो सारे शौहर मानते हैं ना आजकल, वो तो कुरान से ज्यादा अहमियत है खबरों की, ज्यादा एतमाद हमारा खबरों के ऊपर मीडिया के ऊपर है। तो भाई उनसे मीडिया की न्यूज की को बुनियाद बना के बात क्यों नहीं करती? मीडिया की खबरें, राइट, जो के ऑथेंटिक, ऐसी हर चीज सुनी इन ऑथेंटिक होती है ना, इसी वजह से कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबयन, कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। क्या मतलब? उसको 100% रद्द ना कर दो, हो सकता है उसके अंदर सच्चाई हो, तो तहकीक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई सच्चाई है कि सच्चाई नहीं है। क्या मतलब? कि मीडिया से जो खबरें आती हैं उनके ऊपर आंखें बंद करके एतमाद ना कर लो, लेकिन आंखें खोल करके तहकीक करके जब वो चीज कंफर्म हो जाए कि ऐसी है तब उस पर एतमाद करो। कहने का मकसद ये है कि खबरों को बिल्कुल ही हम इग्नोर नहीं कर सकते, खबरों को बतौर दलील के अपना मौकफ बयान करने के लिए, अपना मौकफ प्रूफ करने के लिए खबरों को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना पड़ेगा, खुसूसन ऐसे शख्स के साथ जो कि हजरत को नहीं मानता या जो कुरान मजीद की किसी तफसीर की बात को नहीं मानता या किसी और जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीन को नहीं मानता। तो भाई आप खबरों को तो मानता है ना, तो खबरों के ऊपर बात करो ना फिर उनसे, राइट, कि ये तालीमी निजाम जिसको आपने इतना अच्छा समझा हुआ है, उस तालीमी निजाम की ये हकीकत है, वो खबरों से पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे बात करें ना, जैसे उन्होंने माशाल्लाह कुरान मजीद की आयत भी इसी मौजू के ऊपर, कि कुल या अहले किताब, कह दीजिए कि ए अहले किताब, तआलो इला कलिमतिन, आ जाओ उस कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान मुत्तफिकुन अलैह है, अहले किताब को ऐसे बुलाओ, इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, वो क्या है? अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया। ये अहले किताब इस बात को तस्लीम करते थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हम उसके साथ किसी को जो है ना वो शरीक नहीं ठहराते। मजे की बात तो ये थी कि मानते भी थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम को साइड में जो है ना उन्होंने, यानी एक गोया के एक सूडो किस्म का खुदा भी बना लिया था, जैसे हमने भी तो सूडो खुदा बनाए हुए ना, हम भी तो यही कहते हैं अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया, हम भी यही कहते हैं जैसे ईसाई कहते हैं, लेकिन हमने साइड में चुपके से कुछ खुदा दाखिल कर दिए हैं। ठीक है, ईसाइयों ने भी चुपके से ईसा अलैहिस्सलाम का जो तसव्वुर था ना अल्लाह के बेटे वाला, वो चुपके से घुसेड़ दिया था इसके अंदर, लेकिन ऊपर से यही कहते थे कि नहीं, हम तो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं कराते। तो अब अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को सिखा रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि ये कुरान तो हम तक पहुंचा है ना, कि ऐसे लोगों से तुम कॉमन बातों के ऊपर, कॉमन पॉइंट्स के ऊपर बात करो। ठीक है, तो तो फरमाया कि इन आयात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस मुनाजरे का जिक्र किया गया है जो उन्होंने बुत परस्ती और नजूम परस्ती के खिलाफ अपनी कौम के साथ किया था और फिर सबको तौहीद हक का सबक दिया था। यानी अल्लाह अल्लाह बस बाकी अबस। तौहीद क्या है? अल्लाह बस बाकी अबस, यानी अल्लाह के बगैर जो कुछ भी है वो अबस है, वो बदमजा है, सिर्फ बेमजा नहीं है बल्कि बदमजा है, जैसे हमारे हजरत अहमदुल्ला फरमाया करते थे, अल्लाह के बगैर हर चीज बदमजा है। ठीक है, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, ये है तौहीद। अल्लाह की खातिर दो आलम से खफा, ये हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह ने अपने अहवाल के हिसाब से शेर कहा, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। अल्लाह ताला हशर में इसके खुद जो है वो अल्लाह ताला गवाही दे दे। ठीक है, तो इसका सबक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया। पहली आयत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आदर से कहा कि तुमने अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बना लिया है, मैं तुमको और तुम्हारी सारी कौम को गुमराही में देखता हूं। ठीक है, मशहूर ये है, अब ये थोड़ी सी तारीखी हकायक बयान किया हजरत ने, कि आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था, मशहूर है, यानी ये नहीं कि हदीस में बल्कि जो स्कॉलर्स हैं उनके दरमियान ये बात मशहूर है। मुअर्रिखीन, यानी ये मशहूरी कहाँ से आती है? ये तारीख से आती है, हदीस तारीख नहीं है, कुरान तारीख नहीं है, तारीख एक अलग कस्म की नॉलेज को कहते हैं। ठीक है, जो कि इंसानों ने अपने मुशाहिदों की बुनियाद पर लिखी है उसको तारीख कहते हैं। कुरान और हदीस ये तारीख नहीं, वो वही की बुनियाद पर कलमबंद की गई। ठीक है, कुरान कलमबंद किया गया है, कागज के ऊपर लिखा गया है, लेकिन लोगों के मुशाहिदे से नहीं लिखा गया है बल्कि ऊपर से वही नाजिल हुई उसको कलमबंद कर दिया गया, तारीख ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहां फरमाते हैं कि अक्सर मुअर्रिखीन यानी हिस्टोरियन जो तारीख को कलमबंद करने वाले थे उन्होंने उनका नाम तारिख बदलाया है, और यह है कि आजर उनका लकब है, यानी असल नाम आजर नहीं था बल्कि असल नाम तारिख था, आजर उनका टाइटल था। और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह और उलमाए सलफ में से एक जमात का कहना यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था और चचा का नाम आजर था। उनका चचा आजर नमरूद की वजारत के बाद शिर्क में मुब्तला हो गया था, यानी वो नमरूद के पहले नहीं था वो मुशरिक, लेकिन कमजोर ईमान का होगा तो जब नमरूद ने दुनियावी वजारत ऑफर करी, मिनिस्टरशिप ऑफर करी, तो वो नमरूद के साथ एग्री करना शुरू हो गया कि हाँ भाई ठीक है, जो आपका दीन वही मेरा भी दीन, तो फिर शिर्क करना शुरू हो गया। ठीक है, और चचा को बाप कहना अरबी मुहावरात में आम है। ठीक है भाई, बाप क्यों यहां पे कहा या अबाना ले अभी ही आजर? ठीक है, क्योंकि अरबी मुहावरे के अंदर चचा को भी जो है वो बाप कह दिया जाता है, जैसे हाँ हमारे यहाँ भी जो है वो अब्बू को जो अपने वालिद होते हैं उनको अब्बू कहते हैं और जो चचा होते हैं उनको अब्बी कह देते हैं, अब्बी। अब सुनने वाला समझे कि ये जैसे कि ये इसके अब्बू ही हैं, उसको क्या पता कि भाई ये अब्बी जो है वो छोटे अब्बू को कहते हैं, राइट? तो ये उर्दू मुहावरे में भी अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन अरबी मुहावरे में दिस इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। तो इसी मुहावरे के तहत आयत में आजर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप फरमाया गया है। ज़रकानी ने शरा मवाहिब में इसके कई शवाहिद भी नकल किए हैं। ठीक है, वो शवाहिद हमारे सामने नहीं है ना हमारे पास इतनी तौफीक कि हम जाकर के अल्लामा ज़रकानी की जो है वो शरा मवाहिब पढ़े, तो हम शफी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एतमाद करते हुए अभी जैसे उन्होंने कहा है तो वैसे ही होता होगा, क्योंकि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे इंसानों में से थे, तो हम उनकी तकलीर करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये देखें कुरान मजीद के अंदर तो ये इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना, वहां पर तो ये सारी चीज कुछ भी नहीं थी बल्कि काला इब्राहिम बोले अभी आजर। ठीक है, तो अब जो है ना वो कोई कहे कि अच्छा कुरान में जब कुछ नहीं है तो फिर वो कहाँ से आ गया, तो भाई आपको नहीं पता था ऐसी बात है, क्योंकि आप जो है वो क्या वो पले कॉलेज के चक्कर में बड़े कॉलेज के चक्कर में पले दफ्तर के क्या है वो उनकी अकबर इलाहाबादी की, ठीक है। तो आपको ये पता कि भाई हमारे दीन का जो इल्म है वो सिर्फ कुरान से नहीं आता, ठीक है, बल्कि कुरान मजीद पहला माखज है, पहला सोर्स है, दूसरा सोर्स जो है वो हदीस मुबारक है, और तीसरा सोर्स जो है वो कंसेंसस ऑफ द उलमा है, ठीक है, जिसको के यानी उलमा का जो है वो, तो और फिर चौथा जो है वो कयास है, ठीक है। तो इन चारों से हमारे पास नॉलेज आती है, और कुरान मजीद के अंदर तो नमाज का तरीका नहीं दिया, जाहिर सी बात है जिसको नमाज नहीं पढ़नी है तो वो यही कहेगा ना कुरान में किधर लिखा हुआ है नमाज ऐसे पढ़नी है, उसे नमाज असल में पढ़नी ही नहीं है, तो कुरान में ढूंढेगा कि अच्छा बताओ जरा कुरान नमाज का तरीका किधर है कुरान मजीद के अंदर, तो कुरान तो कहते ही नहीं है नमाज कैसे पढ़नी है, तो फिर हम ही तुम उन्होंने नमाज का तरीका बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, कुरान भी तो हदीस है भाई, अजीब मतलब कुरान पहले बात हुई थी ना, कुरान भी तो हदीस है ना भाई, जिनको बहुत ज्यादा वो होता है ना कि नहीं हदीस क्या है कुरान असल है, तो भाई उनको बताना पड़ता है ये वाली बात कि तुम जिस चीज को असल समझ रहे हो ना वो भी असल में वही है जिसको तुम नकल समझ रहे हो, या जिसको तुम बेकार समझ रहे हो ना नाउजुबिल्लाह हदीस, तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, जरा कान खोल करके और आंख खोल करके सुनो और जरा सा पढ़ो इस बात को, समझो इस बात को कि कुरान भी जो है ना ये भी हदीस ही, ठीक है, बस हदीस मुतवातिर है, जाहिर है वो अब रिवायत टाइप की हदीस नहीं है लेकिन हदीस में तो बात है। उन्होंने दीन कब सीखा है, रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, जजाकुमुल्लाह, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली हमारा ये मामला है, पले कॉलेज के चक्कर में, और अब जो है वो थोड़ा सा और बड़े हो गए, अब यूनिवर्सिटी के चक्कर के अंदर है, यूनिवर्सिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यूनिवर्सिटी की डिग्री के ऊपर तो हर चीज कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे दीन हो, चाहे हमारा अपना खानदान हो, चाहे जो है वो हमारे यानी कुछ भी हो, हम यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, नहीं? किसकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी? नबी अलैहिस्सलाम की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, सहाबा कराम की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, या उम्मत के जो है वो नेक लोगों की बनाई हुई, नहीं गोरे साहब की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, यूरोपियन की और अमेरिकन की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, राइट? तो ये एग्जैक्टली हमारा ये मामला है, अब जो है वो हम बहस करते हैं जो है वो जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया, अब उनसे बहस कौन कर रहा है, यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी को किसी चीज के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो जो है वो आलम दीन से बहस कर रहा है कि नहीं इसका ये मतलब नहीं इसका ये मतलब होता है, मतलब हु आर यू भाई, तो पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, यही बंदा फिर जब मरेगा तो वो साहब के दफ्तर में जाकर के मरेगा, ऐसी जिंदगी है, ये हमारी प्रायोरिटी है, जाहिर सी बात है उठेगा भी फिर उन्हीं लोगों के साथ, ठीक है, वो कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी, अकबर इलाहाबादी ने भी माशाल्लाह मजाया अशार मजाया मजा में उन्होंने बड़े काम की बातें कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उनकी काम की बातें समझ में नहीं आई, हमने अकबर इलाहाबादी के अशार को मजाक ही समझ लिया, हालांकि उनका मजाक करने का मकसद ये नहीं था कि उसको मजाक समझा जाए, ठीक है। तो इस्लाह अकायद व अमाल की दावत अपने घर और अपने खानदान से शुरू करनी चाहिए, बेशक वो आपको ठेंगा दिखा दें, बेशक वो उनमें से एक भी आपसे एग्री ना करें, लेकिन शुरू वहीं से करनी, शुरू वहीं से करनी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दिनों पता नहीं क्या कोई पुरानी चीज मुझे नजर आ गई थी, लैपटॉप पे शायद कुछ तलाश कर रहा था, अल्लाह ताला की महज तौफीक से और अपने मशायख की जो है ना वो दुआओं और तवज्जोहात ही, उन्हीं को हम क्रेडिट देते हैं भाई, अपने ऊपर कैसे क्रेडिट लें, हम तो किसी काबिल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जब शुरू किया था ना ये काम, शुरू किया था दीन के की दावत देना, दीन का काम करना, जब यानी जब हजरत ने हुक्म दिया था करने का उस वक्त, तो वो जो पहली क्लास थी ना उसमें सिर्फ खानदान के लोग, और खानदान के, मेरे ख्याल में खानदान के अलावा कोई भी नहीं था, या शायद एकाध होगा जो कि खानदान के अलावा, सिर्फ खानदान के लोग, ठीक है, ये बेशक है कि अब उनमें से अक्सर नहीं है, इल्ला माशाल्लाह चंद गिनती के लोग हैं जो कि खानदान के अभी भी साथ हैं, बाकी सब ने ठेंगा दिखा दिया, सब चले गए, कोई नहीं आया लेकिन सुन्नत पे अमल की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, अल्लाह का ये करम है बस के खानदान से शुरू, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हालांकि उस वक्त ये तफसीर पढ़ी भी नहीं थी, सही, इस्लाह अकायद व आमाल की दावत अपने घर और अपने खानदान से शुरू करनी चाहिए। आज़र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद हों या चचा, बहरहाल नस्बी तौर पर उनके काबिल एहतराम बुजुर्ग तो थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक अपने घर से शुरू फरमाई, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका हुक्म हुआ है, वह अनजर अशीरतक अल अकरबीन, ठीक है, अपने घर वालों से, जो अकरबीन सबसे करीब जो है ना तुम्हारे खानदान, यानी खानदान वालों में से भी जो सबसे करीब, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के खानदान वाले तो मदीना मुनव्वरा में भी रहते थे ना, ननियाल जो था वो मदीना मुनव्वरा में रहता था, ठीक है, तो मदीना मुनव्वरा कब जा रहे हैं, 13 साल के बाद, ठीक है, ये नहीं कि शुरू जो है वो मदीना मुनव्वरा से जाके कर रहे हैं, और ताइफ जो है वो भी कब जा रहे हैं, 10 साल के बाद, तो शुरू कहाँ से कर रहे हैं, अपने बिल्कुल घर के अंदर से, बीवी राइट, और जो है वो बेटियां, और जो है वो घर में साथ रहने वाले कजन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है, और अपने चचाओं अबू लहब से लेकर के जो है वो सारे के सारे 11 चचा जो थे, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अदाब से डराइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इसके मातहत सबसे पहले अपने खानदान ही को कोहे सफा पर चढ़कर दावत हक के लिए जमा फरमाया, ठीक है, कोहे सफा, सुभान अल्लाह, हमें अल्लाह ताला वहां तौफीक देता है उमरे के लिए, वहां चले जाते हैं, वहां नबी रसूल ने चढ़ के ये काम किया था। तफसीर बहर मुहीत में है कि इससे भी मालूम, ये भी मालूम हुआ कि अगर खुदा के कोई वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग, खानदान के कोई वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग दीन के सही रास्ते पर ना हो तो उनको सही रास्ते की तरफ दावत देना एहतराम के खिलाफ नहीं, ठीक है, कि बच्चा होकर के मेरे सामने जुबान चला रहा है, मुझे बता रहा है क्या सही है और क्या गलत है, और ये मुझे कह रहा है कि मैं कुछ काम गलत कर रहा हूं, ये नहीं है एहतराम के खिलाफ, ठीक है, बड़े तो ये बातें कहते ही हैं, वो तो आपके साथ भी कोई बच्चा आकर के बात करे ना, आप भी उसको यही कहेंगे, लेकिन कहना चाहिए नहीं, उनको भी नहीं कहना चाहिए, हमें भी नहीं कहना चाहिए, भाई बात सही कर रहा है तो सही है, दलील के साथ बात कर रहा है तो फिर सही है, तो नबी रसूल दलील के साथ ही बात करी थी, तो ये एहतराम के खिलाफ नहीं है बल्कि हमदर्दी व खैर ख्वाही का तकाजा है। और ये भी मालूम हुआ कि दावत हक और इस्लाह का काम अपने करीबी लोगों से शुरू करना सुन्नत अंबिया है, ठीक है, तो फिर अब इसका जो रिवर्स हो गया वो क्या, कि अपने करीबी लोगों को छोड़ करके सोशल मीडिया से या इंटरनेट से या दूर के लोगों से दावत का काम शुरू करना, ये क्या हुआ, सुन्नत की, सुन्नत का ऑपोजिट क्या होता है, सुन्नत का ऑपोजिट क्या होता है पता है ना, बिदत, बिदत है, ठीक है, सुन्नत का ऑपोजिट जो है ना वो बिदत होता है, सही है, तो अल्लाह ताला बिदत से हम सबकी हिफाजत फरमाए, अगर हो गई है तो माफी मांग लेना ताला से, ठीक है। दो कौमी नजरिया, अब ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह, देखें सियासत, मुल्की सियासत, आलमी सियासत को कुरान मजीद की तफसीर के अंदर लेकर के आ रहा है, और यही है हमारा दीन, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द दीन है, ठीक है, तो दो कौमी नजरिया, मुसलमान एक कौम और काफिर दूसरी कौम, अब ये काफी लंबा टॉपिक चल सकता है, तो चूंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया है तो इस वजह से हम अगर यहाँ पे रोक दें, लेकिन कुछ इसकी तमहीद है वो मैं जल्दी से पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि असल में फिर ये दो कौमी नजरिया तो अगले पेज पे पर आता है, तो फरमाते हैं कि नीज इस आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान और कौम की नस्बत अपनी तरफ करने की बजाय बाप से ये कहा कि तुम्हारी कौम गुमराही में, ठीक है, इसमें इस अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा की राह में अपनी मुशरिक बरादरी से कतअ ताल्लुक करके अदा किया, अपने अमल से बतला, और अपने अमल से बतला दिया कि मुस्लिम कौमियत रिश्ता इस्लाम से कायम होती, रिश्ता इस्लाम से कायम होती मुस्लिम कौमियत, ठीक, हमारी क्यों नहीं कायम हो पाती है रिश्ता इस्लाम की वजह से, क्योंकि हमारा इस्लामी कमजोर है, हमारे खानदानी नस्बतें मजबूत हैं, खानदानी नस्बतें मजबूत हैं, ऊपर ऊपर से बड़ा जो है वो हजरत 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 जी हजरत जी करते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत जब नजर आती है ना पता चलता है कि असल में तो ये खानदानी दीन पे अमल कर रही है, असल में इनके लिए अहम जो है ना वो इनका खानदानी जद्दी पुश्ती जो दीन चलाया जा रहा है ना, असल में तो वो अहम है, ऊपर से जो है वो हजरत जी के जो है वो नारे लगाते रहते हैं, खानदान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा फिर दीन जो है ना वो इस्लाम की बुनियाद पर होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, और जाहिर है फिर इस्लाम की बुनियाद पर रिश्ते कहाँ से होंगे, तो मुस्लिम कौमियत रिश्ता इस्लाम से कायम होती है, नस्बी और वतनी कौमियतें अगर इससे मुतसादिम हों तो वो सब छोड़ देने के काबिल हैं। हमारा इस्लाम मजबूत होगा तब हमारे इस्लामी रिश्ते भी मजबूत होंगे, वरना रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते जब तक इस्लामी मजबूत ना हो। हजार खुवैश के बेगाना बेगाना अज खुदा बाशद, फिदाए यक तने बेगाना काशना बाशद। मुझे फारसी नहीं आती लेकिन इसका तर्जुमा देखने का मौका मिल गया, बहुत प्यारा शेर है कि हजार ख्वाहिश हजार रिश्तेदार के अल्लाह से बेगाना है, हजार रिश्तेदार जो अल्लाह से बेगाना है ना, वो कुर्बान एक ऐसे बंदे के ऊपर जो के अल्लाह ताला से आशना है। उस एक बंदे की मोहब्बत ऐसे हजार रिश्तेदारों की मोहब्बत से अफजल है, हजारों रिश्तेदारों की मोहब्बत उस एक बंदे की मोहब्बत पर कुर्बान है जो कि अल्लाह से आशना है, अल्लाह वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से भी माशाल्लाह बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने हजरत से अल्लाह की खातिर मोहब्बत की और सारी दूसरी मोहब्बतों को उससे कम दर्जा दिया, सारी दूसरी मोहब्बतों को उससे कम दर्जे के ऊपर रखा। अल्लाह जानता है किसने ऐसा किया, वाकई किया, और अल्लाह ये भी जानता है किसने ऐसा नहीं किया, खाली ऊपर से बातें बनाई। और हमारा हिसाब हजरत जी ने नहीं करना, हमारा हिसाब अल्लाह ने करना है जो के वाकिफ है बातों से। जिसने किया वो बहुत बड़ी खुशखबरी का जो है वो मुस्तहिक, जिसने ऐसा किया ठीक है, अल्लाह को तरजीह दी और अल्लाह की निस्बत को तरजीह दी बजाय इसके कि अपने खानदान। हाँ, खानदान की अहमियत है, ये नहीं कह रहे कि खानदान की कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह ही ने खानदान बनाए, लेकिन अल्लाह की निस्बत से ज्यादा नहीं। ठीक है, कुरान करीम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को जिक्र करके आइंदा आने वाली उम्मतों को हिदायत की है कि वो भी उनके नक्श कदम पर चलें। इरशाद है, कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहिम, तहकीक के तुम्हारे लिए इब्राहिम में बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन नमूना है। वल्लदीना माअहू, और जो उनके साथ है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी ईमान लाने वाले कुछ थे, उनके भी उम्मती, यानी कि कोई भी ईमान नहीं लेकर के आया था उनके ऊपर, तो जो लोग उनके थे वो उनके सहाबा थे, तुम्हारे लिए बेहतरीन। उन कम अज कम इसहाक अलैहिस्सलाम को तो पता है ना उनकी जो औलाद थी राइट, और उनके जो वो चचाजात जो है वो जो भतीजे थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, वो तो सब उनके साथ ही थे ना। उनकी बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत जो है वो हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये सब सहाबा सहाबियात थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जिनका हमें मालूम है, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका हमें मालूम नहीं है। तो वो हमारे लिए उसवा हसना है, जैसे उन्होंने किया वैसे ही हमें भी करना है। अल्हुब्बु लिल्लाहि वल बुग्धु लिल्लाह फकद इस्तकमल ईमान, ठीक है, तब ईमान मुकम्मल होता है जब अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह की खातिर बुग्ध हो। इज कालू लिकौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे बरी हैं और जिनकी तुम इबादत करते हो हम उनसे भी बरी हैं, ठीक है, हम यानी वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। जैसे आज हमारी नस्ल, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और तौबा की तौफीक अता फरमाए नस्लों को भी और हमें भी, कि हमारी नस्ल आज क्या कह रही है, वी डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग विद दिस रिलीजन, वी डोंट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस रिलीजन राइट। उसी तरह उन्होंने जो है ना वो इनको कहा था, वी डोंट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग टू डू विद योर दीन, विद यू एंड विद योर दीन, ठीक है, मिन दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़ कर। हाँ, अल्लाह अगर तुम अल्लाह के खिलाफ ना हो तो फिर तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम हमसे मोहब्बत करो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अल्लाह। हाँ, अगर अल्लाह के साथ हो तो फिर ठीक है, यानी उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस पर हसना और काबिल इक्तदा हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का ये अमल कि उन्होंने अपने नस्बी और वतनी बरादरी से साफ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे गलत माबूदों से बेजार हैं और हमारे तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ व अदावत की दीवार उस वक्त तक हायल है जब तक तुम एक अल्लाह की इबादत इख्तियार ना, ठीक है, तो ये जो है ना बुग़्ज़ फिल्लाह बेजारी, भाई ये ईमान की सलामती के लिए शर्त है। हम इतने ह्यूमनिस्टिक हो गए हैं, इतने अखलाक पसंद हो गए हैं, क्योंकि हमारे कॉलेजेस, हमारे यूनिवर्सिटीज और हमारे स्कूलों ने हमें ऐसा बना दिया है, ठीक है ना, वो नाइस मैनर्स के नाम के ऊपर बीइंग नाइस टू एवरीवन एल्स एंड बीइंग नाइस एंड बीइंग गुड मैनर्ड एंड बीइंग वगैरह वगैरह, राइट? इसके नाम पर उन्होंने कुफर और गुनाह की बेजारी हमारे दिल से निकाल। हम गुनाह से भी वैसे ही कंफर्टेबल हैं, हम कुफर और काफिर से भी वैसे ही कंफर्टेबल हैं कि जैसे कि हमें, ये तो नहीं कहना कह सकता, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं कह सकता कि जैसे हम ईमान वालों के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हम नहीं है ईमान वालों के साथ कंफर्टेबल। तो इस वजह से ये कहना पड़ रहा है कि हम कुफर और काफरी के साथ वैसे कंफर्टेबल हैं जैसे कि हमें ईमान वालों के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए था, हमें नेकी के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा। तो बिल्कुल बेजारी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसी वजह से अगली नस्ल जो है वो खुल के कह रही है कि हम तुम्हारे दीन से बेजार हैं, हम इस, जैसे कल कहा था ना वो हमारे पीएचडी डॉक्टर साहब ने, कि उनका जो था टीचर था वो कह रहा था कि मैं काबा को, काबा का तवाफ करने की बजाय मैं अपने कॉलेज का तवाफ करूं, ये ज्यादा मेरे लिए महबूब है। खुल के कह दिया ना उसने कि मैं बेजार हूं तुम्हारे दीन से। उसकी वजह क्या बनी? क्योंकि उनसे पिछली जो नस्ल थी वो बेजार कुफर से नहीं थी, वो कुफर से बेजार नहीं थी। दिस इज हाउ इट ट्रांसलेट्स टू, मतलब अगली जनरेशन में फिर ये एक जनरेशन की बात होती है खाली, एक जनरेशन के अंदर जो है ना ये खुल के सामने आ जाता है मामला। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अकल अकल सलीम अता फरमाए, बात को समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।